ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं मुकेश कुमार मिश्र। आरंभ में मुख्य समाचार शीर्षक। सभामुख पद के लिए पार्टी की ओर से उम्मीदवारी देने का नेकपा सचिवालय ने किया निर्णय। इसके लिए उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हम्फे को पद से इस्तीफा दिलवाने का भी लिया गया फैसला। विभाजित कम्युनिस्ट पार्टियों को एकताबद्ध होने का नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष प्रचंड ने किया आह्वान। और ईरान की सेना ने स्वीकार की यूक्रेन के यात्री विमान को मार गिराने की गलती। अब समाचार विस्तार से। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सचिवालय की बैठक ने प्रतिनिधि सभा में रिक्त रहे सभामुख पद के लिए पार्टी की ओर से उम्मीदवारी देने का निर्णय किया है। आज प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में हुई नेकपा सचिवालय बैठक ने यह निर्णय किया। इसके लिए बैठक ने नेकपा से ही निर्वाचित मौजूदा उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हम्फे से अपने पद से इस्तीफा दिलवाने का निर्णय भी किया है। ये जानकारी पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ ने दी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सभामुख के लिए उम्मीदवारी देने का निर्णय बेशक हुआ है, मगर उम्मीदवार किसे बनाया जाए इस बारे में फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने विभाजित कम्युनिस्ट पार्टियों को एकताबद्ध होने का आह्वान किया। आज पार्टी मुख्यालय धुम्रवाराही में आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रचंड ने ऐसा आह्वान किया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन एकीकृत माओवादी और नेकपा एमाले के बीच एकता होने के बाद देश में राजनीतिक स्थायित्व, स्थिर सरकार गठन होते हुए देश आर्थिक विकास और समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ा है। नेत्र विक्रम चंद विप्लव के नेतृत्व वाली पार्टी से नेकपा में प्रवेश करने वाले नेता मोहन कार्की और नेत्री सीता कार्की का पार्टी में स्वागत करते हुए अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि अब देश को समाजवाद की तरफ ले जाने का आधार तैयार हो रहा है। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री डॉ शशांक कोइराला ने कहा कि सभापति शेर बहादुर देउवा के पास पार्टी संचालन की योजना न होने के कारण पार्टी समस्या से गुजर रही है। आज चितवन में पत्रकारों के साथ बातचीत में महामंत्री डॉ कोइराला ने कहा कि आने वाले महाधिवेशन में पार्टी को एकताबद्ध बना सकने वाले नेतृत्व चुना जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार तो जन अपेक्षा के अनुसार काम नहीं ही करती है, ऊपर से प्रतिपक्ष के भी निष्क्रिय हो जाने के कारण जनता में निराशा आ चुकी है। अर्थमंत्री डॉ युवराज खतीवड़ा ने कहा कि प्रदेश नंबर 2 का विकास संघीय सरकार की मुख्य प्राथमिकता में है। आज महोत्तरी के बर्दीवास में प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय द्वारा आयोजित प्रदेश समन्वय समिति की बैठक में अर्थमंत्री डॉ खतीवड़ा ने बताया कि प्रदेश नंबर 2 की समृद्धि के लिए विशेष परियोजनाएं और कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व पश्चिम राजमार्ग की स्तरोन्नति, पूर्व पश्चिम रेल संचालन लगातार काम जल्द ही पूरे हो जाएंगे। मौके पर प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत ने कहा कि सभी के सहकार्य और समन्वय मिले तो जल्द ही प्रदेश समृद्धि और सुशासन की दिशा में आगे बढ़ जाएगा। 3 नंबर प्रदेश सभा की आज की बैठक में मुख्यमंत्री डोरमणि पौडेल ने प्रदेश की राजधानी हेटौड़ा को बनाने का प्रस्ताव पेश किया। मुख्यमंत्री पौडेल के प्रस्ताव पर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस के प्रदेश संसदीय दल के नेता इंद्र बहादुर बानिया, राप्रपा की सांसद रीता मांझी और राप्रपा संयुक्त की सांसद रीना गुरुंग ने समर्थन जताया था। प्रदेश सभा की आज की दूसरी बैठक में प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेता इंद्र बहादुर बानिया ने प्रदेश का नाम बागमती रखने का प्रस्ताव पेश किया था। 3 नंबर प्रदेश सभा की अगली बैठक कल सुबह 9 बजे के लिए बुलाई गई है। पूर्व राष्ट्रपति डॉ रामवरण यादव ने कहा कि जिस देश में मीडिया स्वतंत्र होता है वहीं लोकतंत्र मजबूत होता है। आज चितवन में पत्रकारों के साथ बातचीत में पूर्व राष्ट्रपति डॉ यादव ने कहा कि विधि का शासन, सुशासन और आर्थिक अनुशासन होने पर ही लोकतंत्र की नींव मजबूत होती है। ये बताते हुए कि 3 तहों की सरकारों के बीच समन्वय होने पर ही विकास संभव है, उन्होंने कहा कि राष्ट्र की समस्या का समाधान संघीय सभा से ढूंढा जाना चाहिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल ने कहा कि देश के सार्वजनिक यातायात क्षेत्र को व्यवस्थित, मर्यादित और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार वाले निकायों की भूमिका और अधिक प्रभावकारी होनी चाहिए। आज यातायात केंद्रीय महासंघ नेपाल की प्रथम राष्ट्रीय साधारण सभा के उद्घाटन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यातायात क्षेत्र के एकाधिकार का अंत करते हुए इस क्षेत्र में मौजूद विकृतियों को नियंत्रित करने के लिए नियमनकारी निकायों को सक्रिय होना होगा। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश कुमार भट्टराई ने कहा कि बौद्धिक जनशक्ति और पूंजी को बाहर जाने से रोकना जरूरी है। आज काठमांडू में एक कार्यक्रम में मंत्री भट्टराई ने कहा कि पढ़ाई के लिए बड़े पैमाने पर बौद्धिक जनशक्तियों के साथ साथ देश से पूंजी के बाहर जाने की मौजूदा स्थिति काफी भयानक है, इसलिए इसे रोकना ही होगा। उन्होंने बताया कि शुरू हो चुके भ्रमण वर्ष 2020 के साथ ही अब भौतिक पूर्वाधार के काम भी होंगे। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि निर्माणाधीन निजगढ़ विमानस्थल विश्व के उम्दा विमानस्थलों की तरह सेवा देगा। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं, बस थोड़ी देर विज्ञापन।
14-15 बजारमा नयाँ के थाहैन, नेपाल टेलिकमका विभिन्न सेवाका अफरहरू सस्तो, साह्रै सस्तोमा खरिद गर्न परेमा *1415 ह्यास डायल गर्नु पर्ने रहेछ, त्यही भएर कण्ठ पारिरख्या
हो र दाई।
त्यति मात्र हो र भाइ, नेपाल टेलिकमले विभिन्न समयमा ल्याउने विभिन्न अफरको बारेमा थाहा पाउन पनि *1415 ह्यास डायल गर्नु पर्ने रहेछ नि त।
14-15
मलाई पनि कण्ठै भयो दाई।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेपाली कांग्रेस ने टेलीकॉम कंपनी के संबंध में मंत्री परिषद के निर्णय पर ध्यान आकर्षण होने की बात कही है। कांग्रेस ने आज प्रेस रिलीज के जरिए कहा है कि निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देते समय यह ख्याल रहना चाहिए कि किसी भी प्रतिस्पर्धी कंपनी के साथ पक्षपात न हो। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा ने कहा कि कृषि का विकास तभी संभव है जब स्वयं कृषि विज्ञों द्वारा कृषि का व्यवसायीकरण किया जाएगा। दक्षिणी पर्वत बौद्धिक समाज द्वारा काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष तिमिल सिन्हा ने यह बात कही। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ईरान के सरकारी टीवी की रिपोर्ट के अनुसार सेना ने आज यह कबूल किया कि गलती से यूक्रेन के यात्री विमान को उसने ही मार गिराया था। इस विमान में 176 लोग सवार थे। ईरान की तरफ से आए बयान में इसे मानवीय भूल कहा गया है। बोइंग 737 फ्लाइट यूक्रेनियन इंटरनेशनल एयरलाइंस की थी। बुधवार को उड़ान के बाद इसे तेहरान के बाहरी इलाके में मार गिराया गया था। ईरान ने इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया था और उसके कुछ घंटे बाद ही इस विमान को मार गिराया गया था। इससे पहले ईरान इस बात से इनकार कर रहा था कि उसने प्लेन को मार गिराया है। अमेरिका और कनाडा ने अपने खुफिया सूचना के आधार पर कहा था कि ईरान ने इस विमान को मार गिराया था। यह विमान यूक्रेन की राजधानी कीफ जा रहा था। इसमें 167 पैसेंजर और चालक दल के 9 सदस्य थे। इस फ्लाइट में ईरान के 82, कनाडा के 13 और यूक्रेन के 11 नागरिक सवार थे। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने ट्वीट कर कहा है, मानवीय भूल के कारण यूक्रेन के यात्री विमान पर मिसाइल दागी गई और 176 बेगुनाहों की जान चली गई। कहां गलती हुई इसकी शिनाख्त के लिए अभी जांच जारी है। इस भयावह त्रासदी के लिए जो भी दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। इस विनाशकारी गलती के लिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को घोर खेद है। पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदना है। ताइवान में आज यानी शनिवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि मतदान से न सिर्फ राष्ट्रपति चुना जाएगा बल्कि चीन के साथ ताइवान के संबंधों का भविष्य भी तय होगा। ताइवान में मुख्य मुकाबला डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की साई इंग विन और कुओ मिंटांग पार्टी के खान गुओ यी के बीच है और दोनों नेता चीन के साथ संबंधों को लेकर अलग अलग रुख रखते हैं। ताइवान की मौजूदा राष्ट्रपति साई इंग विन दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं। वे चीन और ताइवान के बीच मौजूदा स्थिति का समर्थन करती हैं और चीन से करीबी रिश्ते नहीं चाहती। वहीं उनके मुख्य प्रतिद्वंदी खान गुओ यी ने चीन के साथ तनाव कम करने का वादा किया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर। सभामुख पद के लिए पार्टी की ओर से उम्मीदवारी देने का नेकपा सचिवालय ने किया निर्णय। इसके लिए उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हम्फे को पद से इस्तीफा दिलवाने का भी लिया गया फैसला। विभाजित कम्युनिस्ट पार्टियों को एकताबद्ध होने का नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष प्रचंड ने किया आह्वान और ईरान की सेना ने स्वीकार की यूक्रेन के यात्री विमान को मार गिराने की गलती। इसके साथ हिंदी समाचार से मुझे अनुमति दीजिए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। नमस्कार, शुभरात्रि।